पिता परमेश्वर बहुत ही दीनता के साथ और बहुत ही नम्रता के साथ अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको अकेला नहीं छोड़ा है, आपने हमको एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हर पल हर क्षण हमारे साथ में रहता है, उसको हम व्यक्तिगत तौर पर उसको अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारी मदद करते हैं ताकि हम यीशु के करीब जाएं, यीशु के अनुग्रह में बढ़ें, आपकी पवित्रता में बढ़ें और पिता परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते चले जाएं। और जब इस समय में ये वचन खुलता है, ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरी मदद करें ताकि ये वचन बहुत सरलता से, बहुत साधारण तरीके से लोग समझने पाएं और ये हमारे जीवन में कार्य करने पाएं। जो भी त्रुटियां, जो भी कमियां हैं, जो भी बातें हमारे जीवन में बदलाव की हैं, जो भी सोच हमारे अंदर पूर्वजों से बनी पड़ी है, वो सोच प्रभु हमारी बदलने पाए, प्रभु हम घटते जाएं और आप हमारे जीवन बढ़ते जाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जिस दुनिया में हम रहते हैं, कभी आपने सोचा इस दुनिया के अंदर लोग मरते क्यों हैं, लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, लोगों में दुष्ट आत्माएं क्यों उनको परेशान करने लग जाती हैं, लोग एक दूसरे की हत्या क्यों कर देते हैं, लोग व्यभिचार में क्यों पड़ जाते हैं, लोग एक दूसरे को गालियां क्यों देते हैं, क्यों इस दुनिया के अंदर तलाक होते हैं, क्यों इस घर के इस जीवन के अंदर परिवारों के अंदर तनाव बने रहते हैं, लड़ाइयां झगड़े बने रहते हैं, क्यों इस दुनिया के अंदर तमाम बातें हैं, क्यों इस प्रकार की बातें इस दुनिया के अंदर कभी सोचा है आपने? बाइबल ये बताती है कि इस दुनिया का जो हाकिम है, इस दुनिया का जो राजा है, आपको पता कौन है? शैतान। कौन है? इस दुनिया का राजा हाकिम थोड़े समय के लिए कौन है? शैतान है। जब शैतान इस दुनिया का हाकिम है, जब शैतान इस दुनिया का राजा है, तो शैतान मतलब शैतान को झूठा बोला जाता है, वो झूठा है, वो लोगों को भ्रम में रखने वाला है, वो लोगों को सताने वाला है, लोग मरते हैं उनको खुशी होती है, लोग बीमार पड़ते हैं उनको खुशी होती है, लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं उनको खुशी होती है, क्योंकि वो यहां का क्या है? राजा। क्या है वो? वो यहां का राजा, वो यहां का हाकिम है। लेकिन जिस दुनिया का राजा यीशु मसीह है, जिस दुनिया के राजा यीशु मसीह है, वहां पे बीमारी नहीं है, वहां पर दुष्ट आत्माएं नहीं है, वहां पे कोई चिंता नहीं है, वहां पे मृत्यु नहीं है, वहां पे किसी प्रकार की कलह नहीं है, वहां पे अनंत जीवन है। यीशु मसीह अनंत जीवन का राजा है और इस दुनिया का जो राजा है वो थोड़े समय के लिए प्रभु ने उसको भाई यहाँ का राजा बना रखा है, उसको वो स्वतंत्रता उसको दे रखी है। और जब इस दुनिया का वो राजा है तो इस दुनिया के अंदर लोगों को उसने भ्रम के अंदर डाल रखा है, लोगों को उसने फंसा रखा है, लोगों को उसने अपने चुंगुल में ले रखा है। सोचो कुछ इस प्रकार से इस दुनिया के अंदर अंधकार ही अंधकार, दुनिया अंधकार से भरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया का राजा कौन है? शैतान। इस दुनिया का राजा जो अंधकार से प्रेम करता है वो शैतान, ठीक है। और इस दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह जो उसकी चुंगल में फंसे हुए थे, जो उसकी चुंगल में फंसे हुए थे, यीशु मसीह ने उसके राज्य में, किसके राज्य में? शैतान के राज्य में ही यीशु मसीह ने उनके चुंगल में फंसे हुए लोगों को यीशु मसीह ने चुन लिया। सोचो कुछ इस प्रकार से पूरा 99% पृथ्वी अंधकार से भरी पड़ी है और 1% ज्योति है, और उस 1% जो ज्योति है उसका शैतान बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा? उसका राज्य है, उसकी हुकूमत चल रही है, सब कुछ उसी का ही है। बीमारी वाले बीमारियां हैं, मृत्यु है, हर प्रकार की बातों में लोगों को फंसा रखा। लेकिन जो 1% जो ज्योति है उसके अंदर 90% जो अंधकार है उसके ऊपर कुछ कर नहीं पा रहा है। क्या कारण है? क्यों? क्योंकि अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर उस 1% में, एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, उस 1% ज्योति के साथ में है, इसलिए उसके राज्य में भी वो कुछ कर नहीं पा रहा है। और यह बात हमको समझने की है, ये बात हमको समझने की है कि इस दुनिया के अंदर जब हम रह रहे हैं, इसलिए इस दुनिया के अंदर समस्याएं हैं, क्योंकि दुनिया का राजा शैतान है, हाकिम है, और उसको ये सारी चीजें पसंद है, उसको बलियां पसंद है, लोगों की मृत्यु पसंद है, लोग परेशान रहे उसको ये पसंद है, लोगों के परिवारों में तनाव रहे उसको ये पसंद है, और उसमें वो ज्यादा बावला हो जाता है, परेशान हो जाता है, पागल हो जाता है जब कोई किसी को यीशु मसीह चुनते हैं अंधकार में से जब वो ज्योति में लेकर आ जाते हैं। और जब लेकर आ जाते हैं आपको पता है शैतान किसको इस्तेमाल करता है उनके जीवन में? उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो उसके चुंगल में फंसे हुए हैं, जो उसके चुंगल में, जो उसकी आराधना करते हैं, जो उसकी स्तुति करते हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, उनको इस्तेमाल करता है ताकि जो भाई अंधकार से निकल के ज्योति में आ गए हैं, ये ज्योति से निकल के दोबारा अंधकार में चले जाएं, और कुछ कुछ ऐसे प्रयास करता है। और आज हम जिस खंड को देखने जा रहे हैं उस खंड को हम मेरे साथ निकाले 12वां अध्याय उसका 22वां पद से हम पढ़ेंगे। और यहां पर यीशु मसीह कुछ बातें कर रहे हैं, और कुछ बातें यहां पर हमारे भारत में पूरी दुनिया के अंदर कुछ भ्रम है, ठीक है, उस भ्रम को आज ये खंड हो सकता है इसको क्लियर करें हम सबके अंदर से, जो भ्रम भाई हमारे पूर्वजों के द्वारा या हम दुनिया में रहते हुए हमने सीखे वो जो भ्रम बने पड़े प्रभु उसको पूरा क्लियर करें। तो मेरे साथ निकालें 12वां अध्याय का 22वें पद से, कोई मेहरबानी से आराम से पढ़ दे और जहां मैं बोलूं वहां रुक जाए।
तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा।
ठीक है, यहां पर क्या हुआ है कि भाई यहां से अगर पहले हम घटना को देखें 12वें पद से, अगर हम 12वें पद के पहले पद से 12वें अध्याय के पहले पद से देखें तो वहां पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं जो सारे सबत का सारे जो त्योहार हैं जो उस समय के मैं उनका मैं मेरे ही द्वारा है मैं उसका प्रभु हूं, ठीक है, और सबत के दिन जो उसका त्योहार होता था वो कुछ काम नहीं करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने 9वें पद से एक सूखे हाथ वाले को चंगाई दे दिया। और जो फरीसी लोग हैं, जो लास्ट टाइम ने दिखा बताया था पिछले रविवार को मैंने बताया था, ये जो फरीसी लोग हैं ये लोग पागल हो गए, बोलेंगे इसने सबत के दिन कैसी चंगाई दे दी है, कैसे ने छुटकारा दे दिया है। अब यहां पर देखिए 22 पद में क्या हो गया है, यहां पर एक व्यक्ति है जो अंधा और गूंगा है, किसकी वजह से अंधा गूंगा है, दुष्ट आत्मा अंधा और गूंगा भी कर सकती है, जो दुष्ट आत्मा है किसी को लकवा भी लगवा सकती है, दुष्ट आत्मा किसी के अंदर भाई कोमा में भी लेकर आ सकती है, समझ रहे हैं आप, दुष्ट आत्मा अलग अलग प्रकार की ऐसी ऐसा कर देगी कि लग रहा है कि बीमार है, इसको डॉक्टर की जरूरत है, इसको दवाई की जरूरत है, लेकिन उसको दवाई की जरूरत नहीं है, उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, और डॉक्टर की तरफ जा रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन उसको जो जरूरत है उसको भाई आत्मिक, उसको भाई एक दिव्य शक्ति की जरूरत है, और वो तो दिव्य शक्ति कौन है, यीशु मसीह, किसकी जरूरत है। और यहां पर ये जो व्यक्ति है गूंगा है अंधा है, दुष्टात्मा ने इसको पकड़ रखा है, पता नहीं कितने दिनों से पकड़ रखा है, कितने दिनों से ये परेशान है, और जो इस चीज में फंसा हुआ होता है ना वो उसके परिवार से ज्यादा कोई नहीं जानता कि जब कोई इसमें फंस जाता है तो कितनी समस्याएं होती हैं, क्योंकि मैं मेरे परिवार में था मैं जानता हूं किस प्रकार की स्थिति घर की हो जाती है, परिवार की हो जाती है, उस व्यक्ति की हो जाती है जो इस चीज में फंसा हुआ था, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, ये व्यक्ति है और यीशु ने उसे अच्छा कर दिया, क्या कर दिया, अच्छा। मतलब वो दुष्टात्मा उसके अंदर से क्या हो गई है, वो दुष्टात्मा उसके अंदर से निकल गई है, वो गूंगा करने वाली दुष्टात्मा, वो बहरा करने वाली, जो अंधा करने वाली जो दुष्टात्मा उसके अंदर से निकल गई है और वो बोलने लगा है और क्या करने लगा है, देखने। तो जो परिवार है वो क्या हो गया होगा, आनंदित हो गया होगा, वो व्यक्ति क्या हो गया, आनंदित हो गया है, ठीक है, खुश हो गया है। और हो सकता है जो उनसे सच में प्रियजन है उनको सच में लगाव करने वाले वो भी सच में खुश हो गए होंगे वो भी, ठीक है। यहां पर देखो यहां पर कुछ हुआ 23 में क्या लिखा है,
इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे ये क्या दाऊद की संतान है,
ठीक है। यहां पर जो जब उन्होंने चमत्कार देखा, उन्होंने कभी ऐसा चमत्कार देखा नहीं है, उन्होंने ऐसा चमत्कार कभी देखा नहीं है, और जब उन्होंने ऐसा चमत्कार देखा, अरे ये क्या गूंगा और अंधा एकदम ठीक हो गया, बोलने लगा है, ये देखने लगा है, तो सब बोलने लगे अरे ये तो भाई दाऊद कहीं कहीं है, दाऊद की संतान तो नहीं, लोग बोलने लगे कहीं दाऊद की संतान तो नहीं, दाऊद मतलब लोग इंतजार कर रहे थे उस समय में जो मसीहा आएगा वो दाऊद राजा के वंश में से आएगा, दाऊद राजा की तरह होगा वो, ठीक है, वो इंतजार कर रहे हैं मसीहा का। जब ये बोल रहे हैं यहां पर कि भी ये क्या ये दाऊद की संतान तो नहीं, मतलब ये बोल रहे हैं क्या ये मसीहा तो नहीं, ये बोल रहे हैं, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं, सदियों से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कि कहीं मसीह आने वाला, मसीह आने वाला है, मसीह हमको छुड़ाएगा। और ये इनडायरेक्टली जो मसीह, जो आम लोग हैं, बोल रहे हैं कहीं ये मसीहा तो नहीं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अब उस समय के जो लोग हैं, फरीसी लोग हैं, पावर में हैं, ताकत उनके पास है, और देखो यहाँ पर वो क्या कर, क्या करने लगे।
परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्मा के सरदार बालपुर की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता,
ठीक है। यहाँ पर जो फरीसी हैं, यहाँ पर भाई विरोध करने लगे, किसका विरोध कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं, यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, यीशु मसीह के लोगों का विरोध कर रहे हैं, यीशु मसीह की जो समर्थन कर रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं, आपको पता है। और यहां पर ये बोल रहे हैं कि ये भाई दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल, मतलब शैतान की सहायता से भाई दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा, मतलब यीशु मसीह का तिरस्कार कर रहे हैं, यीशु मसीह का अपमान कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। हम किसकी, हम जो यहां दुनिया के अंदर हैं, यहां का राजा कौन है, और जब इस वचन को सुन रहे हैं ना, तो वो इस दाग में किसके अंदर से इस वचन को चुराए, किसके ध्यान को इधर उधर भटकाए, किसको आंख खोल के सोने के लिए विवश करे, ये समय ध्यान लगा के रखें, ठीक है। और यहां पर देखें 22 में, जो देखें 22 में क्या है, दुष्ट आत्मा से क्या है, वो परेशान है, यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। अब होता है कई लोग जो होते हैं मानसिक तनाव से होते हैं, मानसिक तनाव, और मानसिक तनाव और दुष्टात्मा से जो ग्रसित हैं उनका जो सिम्टम्स है कुछ एक जैसा होता है, ठीक है, एक जैसा होता है। जो दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति है उसका सिम्टम्स भी ऐसा होता है कि भी जैसा मानसिक तनाव के अंदर जो फंसा हुआ है। कैसे पता चले कि भी ये व्यक्ति मानसिक तनाव में है, और कैसे पता चले ये जो व्यक्ति है ये दुष्टात्मा से ग्रसित है। इस संडे को, इस ट्यूजडे को एक डॉक्टर आई थी, डॉक्टर ज्योति, पास्टर कॉन्फ्रेंस हुआ था हमारा, हर उसमें होता है, पहले उसके अंदर क्या कहते हैं, पहले हर महीने के पहले ट्यूजडे को होता है। तो जो डॉक्टर ज्योति थी, वो ज्योति हैं, वो साइकेट्रिस्ट हैं, मानसिक वो हैं, और साथ में वो उसके साथ में वो प्रार्थना करने वाली भी हैं। जब कोई इनके पास आता है वो दोनों इलाज करती हैं, कौन से इलाज करती हैं, मानसिक भी करती हैं और आत्मिक भी इलाज करती हैं। तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि भाई कैसे हम अंतर करें कि ये जो है दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति है और भाई ये जो है भाई मानसिक रोगी है। तो उन्होंने एक बात बोली, और उन्होंने ये बोला कि जो दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति होगा, जब उसके लिए प्रार्थना करी जाएगी, तो दुष्टात्मा यीशु मसीह के नाम के आगे टिक नहीं सकती है, वो निकल जाएगी। क्योंकि दुष्टात्मा को पता है यीशु मसीह कौन है, उसको पता कि भाई ये जो प्रार्थना करे, जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, ये किससे प्रार्थना कर रहा है, दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम के आगे, यीशु मसीह की सामर्थ्य आगे टिक नहीं पाएगी, और यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाएगी, ठीक है। दुष्ट आत्मा का ये ऐसे पता चलता है, वो एकदम निकलेगी। लेकिन जो मानसिक रोगी है, जिसको मानसिक रोग हो गया, हो सकता है वो पहली स्टेज पर हो सकता है उसका स्टेज थोड़ा बढ़ गया हो, तो उसमें क्या होता है, जब उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसके अंदर तो दुष्ट आत्मा है नहीं, वो तो क्या है, मानसिक रोगी है। तो उसमें क्या, उसने इन्होंने बोला कि जब उनके लिए हमें लगता कि कहीं इसके अंदर दुष्टात्मा तो नहीं, हम प्रार्थना करते हैं तो जब पता, प्रार्थना करने से पता चल जाता है ये भाई मानसिक, ये दुष्टात्मा नहीं है, ये मानसिक रोगी, इसको दवाई की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, उसको हम उसको दवाई देकर, धीरे धीरे दवाई देकर, काउंसलिंग देकर उसको हम क्या करते हैं, तो चंगाई भाई ठीक करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनको क्या करते हैं, ठीक करते हैं। और यहां पर एक बात है, बात यह है कि कई कई कलीसियाओं के अंदर दवाई खाने के लिए मना किया जाता है, डॉक्टर के पास जाने से मना किया जाता है, ये बेवकूफी है। दवाई को बनाने वाला कौन है, परमेश्वर। डॉक्टर को बुद्धि देने वाला कौन है, परमेश्वर है, समझ रहे हैं आप। तो जहां डॉक्टर की जरूरत है वहां डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन जहां भाई आत्मिक जरूरत है, कोई दुष्टात्मा से परेशान है, वहां क्या, कहां जाना, किसके पास जाना है, यीशु मसीह के पास जाना। और यहां पर देखें, यहां पर जो फरीसी हैं, ये फरीसी क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह का तिरस्कार कर रहे हैं, यीशु मसीह का अपमान कर रहे हैं, यीशु मसीह को बोल रहे हैं ये जो क्या कर रहा है, बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, मतलब शैतान की सहायता से क्या कर रहा है ये। अब यहां पर आगे देखें यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं,
उसने उनके मन की बात जांचकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह फूटर जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसीलिए वह भी तुम्हारा न्याय करेंगे।
ठीक है, यहाँ पर देखो, ये इस चीज पे ध्यान देना, इस खंड की इस जो पद है इन पे ध्यान देना। और यहाँ पर यदि देखें 25 में लिखा है, उसने उनसे के मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बनाना रहेगा, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपनी ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। हम जिस भारत के अंदर रहते हैं, आप देखते हैं उसके अंदर, आप देखेंगे कि भी जैसे मैं अपने घर का अनुभव बताता हूँ, मेरे घर के अंदर मेरे पापा भगत थे जिनके ऊपर देवी देवता खेलते थे, ठीक है, और मेरी मम्मी जो थी, मेरी मम्मी के ऊपर भूत प्रेत का चक्कर था, बहुत पहले से था, बचपन से देखते हुए आ रहे थे, ठीक है, और कभी भी उनके ऊपर वो खेल जाती थी, वो जो दुष्ट आत्मा थी उनके ऊपर कभी भी खेल जाती थी, और जब वो खेलती थी हमारे पापा क्या करते थे, और भक्तों को बुलाते थे, वो खुद भगत थे। अब क्या कर रहे हैं, भगत आ गए, भगत को आने के बाद रोबिन भाई क्या हो गया, भगत आ गए हैं, ठीक है, अब क्या हो रहा है, बोतल कड़ाया करा जा रहा है, भगत भाई देवता ने बोला मुर्गा काटो, क्या काट दिया, मुर्गा काट दिया, और इधर मम्मी को क्या हो गया, भाई आराम आराम भाई आराम मिल गया, ठीक है, कब तक आराम मिला, एक हफ्ते तक, दो हफ्ते तक, फिर दोबारा तबीयत खराब हो गई, फिर दोबारा भक्तों को बुलाया गया, फिर दोबारा भाई क्या कहते, कुछ और काटो, बकरा काटो, भाई मैं बकरे से खुश होऊंगा, बकरे से खुश हो जाऊंगी, फिर दोबारा क्या काटा, बकरा काटा, फिर क्या हुआ, फिर मम्मी ठीक हो गई, कितने समय तक, दो हफ्ते तक या तीन हफ्ते तक, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर दोबारा तबीयत खराब, फिर दोबारा क्या कहते, भक्तों को बुलाया गया, और ये हमारी आदत बन गई थी। कब तक आदत बन गई थी, भाई मैंने 16 साल तक देखा, 16 साल तक की मेरी आदत थी, ठीक है, मेरे भाई की तो और ज्यादा आदत थी, मतलब वो ज्यादा बड़े थे, उनको और ज्यादा अनुभव था, तो ये मैंने 16 साल तक देखा, हर महीने में दो तीन बारी भाई भगत बैठ जाते थे, और भाई मुर्गे कट रहे हैं, कभी बकरा कट रहा है, कभी कोई और काटने के लिए कर रहे हैं, बोला फलाना जगह पे जाओ, वहां जाकर ये करो तो तब तुम क्या हो जाओगे, घर के अंदर ठीक हो जाओगे, भाई चलो हो गए, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर दोबारा हो गए। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है शैतान झूठा है, उसने भ्रम फैला रखा है, उसने धोखे में रख रखा है, उसने लोगों को चुंगुल में फंसा रखा है। और एक चीज और देखेंगे आप, कोई फलाना व्यक्ति मर गया, जैसे हम जहां रहते थे कल्याणपुरी में, वहां पर एक स्त्री मरी थी भावना नाम की, फांसी लगाकर, ठीक है, और उस भावना नाम की वहां पे लोग बोलते थे, हम विश्वासी थे नहीं, हम देखते थे, वो बोलते थे कि भाई जो भावना नाम की जो स्त्री मर गई उसकी आत्मा क्या करेगी, भटकेगी, और जब भटकेगी तो मतलब भाई जिसके अंदर भटक जाएगी, किसी के अंदर घुस जाएगी तो मतलब उसका नाश। और हमने इस चीज को देखा, हमने कि भी वहां पर करीब 3-4 लोगों को मारा गया, मर गई है वो, उसके चक्कर में बोला भावना आ गई उसके अंदर, और भावना ने क्या कर दिया, उसको मार दिया, और मारा सच में। लेकिन बात यह है, बाइबिल हमको सिखाती है कि भी भावना तो मर गई, चाहे भाई फांसी लगा के मरी, चाहे भाई अपनी मौत मरी, कैसी मरी, भावना तो मर गई। लेकिन ये बाइबिल क्या बता रही है, क्या मरने के बाद आत्मा भटक रही है, या मरने के बाद आत्मा स्वर्ग गई या नर्क गई, ध्यान दे इस चीज पर। यह हम पूर्वजों से देखते हैं, सुनते हैं, ये चीज का हम अनुभव करते हैं, कैसे ब्रह्म में रखती है दुष्ट आत्मा, कैसे ब्रह्म में शैतान रखता है। अब बाइबल के अनुसार वो जो भावना है वो कहां गई, यीशु मसीह पे तो विश्वास करती नहीं थी वो, कहां गई, इस समय में कहां पर होगी वो, भाई जिसको यीशु मसीह ने हमारे बीच में से नहीं चुना उस भावना को वहां जाके देख सकता है। लेकिन मेरा ये प्रार्थना कि हमारी कलीसिया के हर एक जन को चुने और वहां पर भाई क्या कहते हैं स्वर्ग में जाए, भावना को देखने का कहीं मौका नहीं मिला। बाइबल के अनुसार उसके भावना की जो आत्मा है कहां गई, अगर यीशु मसीह ने चुना तो कहां जाती। अब यहां पर ये क्वेश्चन मार्क है कि भावना के नाम से कौन आ रही है, भावना के नाम से ये कौन आकर लोगों को मार रहा है, भावना के नाम से कोई किसी के अंदर आकर वो खेल रहा है, समझ रहे हैं, वो भावना के नाम से क्यों दुष्ट आत्मा भाई क्या बोल रही है, मैं मुझे मुर्गा काटो, उसकी लोग पूजा कर रहे हैं, वो कौन है। अब भावना तो चली गई, कहां गई, नर्क में गई, अरे भावना के नाम से कौन है, ये समझने की जरूरत है। इस बात को समझने की जरूरत है कि शैतान ने दुनिया के लोगों को भ्रम में डाल रखा है। अभी बताइए, गोबर कोई अच्छी चीज होती है क्या? है, गोबर में से अच्छी, क्या कहते हैं, अच्छी चीज निकलती है क्या? शैतान उसका वो राजा है यहाँ का, सोचो गोबर की लोगों से पूजा करवा रहा है, गोबर की। एक जगह मैं और बॉबी जा रहे थे, बाइक पर थे, एक गाय जो थी ना रास्ते में वो कुछ कर रही थी और भागता हो गया वो एक अम्मा थी, भागती गई ऐसे करके ऐसे लिया और ऐसे किया। सोचे इस चीज को, दुनिया का राजा कौन है? वो क्या क्या करवा रहा है? लोग कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं क्या कर रहे हैं। उसने भ्रम में डाल रखा है, उसने सबको फंसा रखा है। पता है क्यों? आपने नाना पाटेकर की फिल्म देखी होगी, दो जन को लेता है, हिंदू को लेता है और किसको लेता है? मुस्लिम को। दोनों की उंगली एक तरफ रखता है और क्या मारता है उसमें? पत्थर मार के क्या निकलता है और क्या बोलता है वो? बता भी, इसमें से हिंदू को किसका है? और शैतान ने दुनिया के अंदर धर्म के गोले बना रखे हैं, समझ रहे हैं आप? ध्यान से सुने इस चीज को। भारत के लोगों को भारत के गोलों में फंसा रखा है, चाइना के लोगों को चाइना के गोले में, धर्म के गोले में फंसा रखा है, अफ्रीका में अफ्रीका के लोगों को अफ्रीका के गोले में, धर्म के गोले में फंसा रखा है, और बहुत सारे धर्म के गोले बना रखे हैं। और धर्म हमेशा तोड़ता है, जोड़ता नहीं है, धर्म जोड़ता नहीं है। और धर्म के गोले में क्यों फंसा रखा है? हर एक को धर्म के गोले में इसलिए फंसा रखा है ताकि उस ज्योति तक, उस सच्चे परमेश्वर तक लोग पहुंच ना सके। वो कौन है? यीशु मसीह। वो दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर तक लोग पहुंच ना सके। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि भाई मैं बाल जबूल की सहायता से नहीं निकालता हूं। उसको पता नहीं है क्या बोल रहे हैं वो, उसको सिर्फ क्या कर रहे हैं? तोहीन कर रहे हैं। किसकी तोहीन कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की। आगे वो बोल रहे हैं, यीशु मसीह एक बात बोल रहे हैं आगे की तरफ, और यहां पर बोल रहे हैं, यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करें। इस दुनिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर शैतान ने भाई धर्म के गोले बना रखे हैं और उनके अंदर फंसा रखा है, अलग अलग बातें बना रखी हैं, उनके अंदर लोगों को फंसा रखा है ताकि उसमें से ना निकल पाए, उसमें से बाहर ना निकल पाए। लेकिन यीशु मसीह अनुग्रहकारी हैं, यीशु मसीह दयालु हैं, यीशु मसीह कोई धर्म नहीं देखते, यीशु मसीह कोई भाई ये नहीं देखते लोग कैसे हैं, उसको चुन लेते हैं और चुनकर अनंत जीवन के लिए क्या कर लेते हैं? अनंत जीवन के लिए उसको अपनी बेटा और अपनी बेटी बना लेते हैं। और उसने फंसा रखा, कहीं हम फंसे हुए तो नहीं है क्या? हमारा ये विश्वास तो नहीं हो, मरने के बाद आत्मा यहाँ भटकती हैं और तंग करती हैं? अगर ये विश्वास है, बाइबल बोलती है नहीं, भटकती नहीं है। स्वर्ग या नर्क कौन भटक रहा है? शैतान और उसके साथ फेंकी गई दुष्ट आत्माएं इस दुनिया के अंदर भटक रही हैं। और किस उनको समस्या उनसे नहीं है जो उसकी चुंगल में, उनकी तो कभी भी बलिया ले लेते हैं, कभी भी कुछ भी कर देते हैं, लेकिन उनको जो समस्या उनसे है जो उसकी चुंगल से निकल गए, चुंगल से निकल गए, और प्रभु ने हमको चुंगल से निकाल दिया, उन तमाम बातों से आजाद कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि भाई जो यहां पर बोलते हैं, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता हूं तो तुम्हारा वंश किसकी सहायता से निकालता है? इसलिए वह ही तुम्हारा क्या करें? मतलब यहां पर जो यीशु मसीह है भाई, यीशु मसीह जिस प्रकार से हैं, यीशु मसीह को लोग जानते हैं कि भाई ये जो है ना परमेश्वर की ओर से है, आम लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन जो आम लोग से जो ऊपर है वो लोग यीशु के विरोध में, रोबिन भाई, ठीक है, वो यीशु मसीह के विरोध में। और यहां पर बता रहे तुम्हारे जो वंश हैं वो भी किसकी सहायता से दुष्टात्मा को निकाल रहे थे? किसकी सहायता से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे? भाई प्रभु की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से। बोल रहा भाई मैं भी उसी की सहायता से निकाल रहा हूं। और यहां पे बोलते हैं भाई कौन तुम्हारा क्या है? तुम्हारा भी क्या करे? वो न्याय करें। अब यहां पे देखो आगे क्या लिखा है,
और यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है।
ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहां पे एक सवाल है, परमेश्वर का राज्य कहां पर है? राज्य कहां पर होता है? जहां राजा होता है, जहां राजा वहां प्रजा, वहां क्या होता है? राज्य। जहां राजा है वही राज्य। यहां पर जो यीशु मसीह बोल रहे हैं, दोबारा पढ़े देखो,
पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है।
परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है, मतलब भाई तुम्हारे बीच में राजा है, तुम्हारे बीच में मसीहा है। वो जो मसीहा है वो मैं हूं, वो बता रहे हैं यहां पर। लोगों की बुद्धि में नहीं बैठ रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये मसीहा हमारे बीच में आ गया, जिसका हम इतने सदियों से, इतने समय से इंतजार कर रहे हैं। बोला राजा मैं हूं, जिस राजा का तुम इंतजार कर रहे हो, जिस राजा का तुम इंतजार कर रहे हो। और हमारा राजा कैसा है? हमारा राजा दयालु है। हमारा राजा ऐसा कि अपनी प्रजा के लिए उसने अपनी जान दे दी। हमारा राजा ऐसा है कि उसने अपनी जान देकर हमें अनंत जीवन के लिए क्या कर लिया? छीन लिया। हमारा राजा ऐसा है कि वो हमारे तमाम पापों को क्या करता है? चाहे हम कैसे ही पाप करें और क्या करता है? क्षमा करता है। लेकिन आगे बताएगा वो कि एक पाप है जो क्षमा नहीं होते, ठीक है? सावधान रहना हम सबको। हम खास तौर से वो जो बात लिख रखी है वो अविश्वासियों के लिए नहीं है, वो विश्वासियों के लिए है। आगे देखिए, हाँ,
क्या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, और जबकि पहले वह उसका बलवंत को ना बांध ले तब वह उसका घर लूट लेगा।
ठीक है, यहाँ पर ये बलवंत व्यक्ति कौन है? यहाँ इस पृथ्वी का राजा, ये पृथ्वी का राजा कौन है? मतलब वो क्या है? बहुत बलवंत, ताकत है उसके पास, जो सातवें के पास ताकत है। और यहां पर ये जो बात हो रही है, बलवंत जो व्यक्ति है ये कौन है? फिर ये बलवंत व्यक्ति कौन है? शैतान। कौन है ये शैतान की बात हो रही है, ठीक है? यीशु मसीह डायरेक्टली बात कर रहे हैं, एक उदाहरण देकर बात कर रहे हैं। हाँ, दोबारा पढ़े यहां पर क्या लिखा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है? क्या लूट सकता है? अभी आपने देखा होगा भारत ने क्या करी थी, एयर स्ट्राइक करी थी, कुछ करा था ना, कितना है? हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी भाई। हाँ, आशा करते हैं वो सही हो। अगर सही थी तो मतलब उन्होंने क्या किया था, क्या किया था? घर में घुसकर उनको मारा था, ऐसा हुआ था। लेकिन जिसको पकड़ लिया था उसके साथ क्या किया गया था? हैं, बड़ी मुश्किल से छोड़ा था उसको, सुझा दिया था उसको, तो जो जो जिसकी ऐसे करके ऐसे मूछ थी, अभिनंदन उसका, उसको सुझा दिया तो मारा था उसको। कैसे मारा था? क्यों? क्योंकि उसके राज्य में, उनके राज्य में था, है ना, सब तरीके से घुसा हुआ था, घूम, क्या कहते, पकड़ा हुआ था। अब जब इस दुनिया का राजा शैतान है, हाकिम है यहाँ का, वो बलवंत है, उसके पास सारे अधिकार उसके, वो कुछ भी कर सकता है। तो यहां पर बोल रहा है कि भाई कैसे उसको लूट सकते हैं, लूट सकते हैं उसको क्या? नहीं, मुझे पता है, मुझे तो जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, दुष्टात्मा ने एक हाथ मारा था मुझे, किसी के अंदर आ गई थी, उसने हाथ मारा था और मैं इतनी दूर जाके गिरा था और तीन चार दिन तक बुखार भी रहा था मुझे, जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था। ताकत है उसके, मार भी सकता है, किसी को मार सकता, किसी के अंदर घुस के। मैंने ये भी देखा है जब यीशु मसीह को नहीं जानता था, भाई डेट बोली गई है किसी को, भाई इस समय मार दूंगा, मार दूंगी, और मार दिया। दुष्टात्मा मार भी सकती है। यहां बोल रहा है वो बलवंत है, वो लू भाई इसको कैसे लूट सकते हैं। हाँ, आगे,
जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है,
ठीक है? यहां पे बोला जो मेरे साथ में नहीं क्या है? मेरे। तो यहां पर इससे पहले यदि हम देखें, वो बोल रहा है कि जब तक उसको बांध ना ले, बलवंत को बांध ना ले, उसको बांधेंगे कैसे? हम बांध सकते हैं क्या? हमारे अंदर ताकत है क्या? शैतान हमसे डरता है क्या? है हमारे, हम ओ भाई क्या कहते हैं, आशीष आ गया, चलो भाई भाग लो, भाग लो यहाँ से, ओ राजेश आ गया, भाग लो यहाँ से। नहीं, किससे डरता है शैतान? अगर आपने पीड़ितों की पुस्तक में कहानी देखी होगी, वहां पे परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है। वहां पर सात भाई हैं और वो भाई तंत्र मंत्र करके दुष्टात्मा को निकालते थे, भूत प्रेत की विद्याओं से दुष्टात्मा को निकालते थे। उन्होंने बोला, अरे ये क्या, ये तो नई चीज आई है मार्केट के अंदर, यीशु मसीह के नाम से लोग निकाल रहे हैं, ओ हम भी इस चीज को अप्लाई करेंगे। और उन सात भाइयों ने क्या करा कि कोई दुष्टात्मा का व्यक्ति आ गया उनके पास। अब उन्होंने बोला कि भाई अब दुष्टात्मा को तो पता है यीशु मसीह कौन है, अब दुष्टात्मा को ये भी पता है यीशु मसीह के नाम से जो निकाल रहा है ये कौन है, दुष्टात्मा को वो भी पता है। लेकिन दुष्टात्मा को ये नहीं पता तो सात कौन है। वो जो सातों थे वो उन्होंने कुछ ऐसी प्रार्थना करी कि भाई हम तुझे जिसके नाम से पौलुस निकालता है उसके नाम से मैं तुझको आगे देता हूं, तू निकल जा, ऐसे करके उसने बोला। अब उनको नहीं पता, अब दुष्ट आत्मा ने उनको तो उल्टा सवाल पूछा, भाई मैं तो यीशु मसीह को भी जानती हूं, मैं तो पॉलिस को भी जानती हूं, लेकिन तुम कौन हो? आगे तो क्या हुआ, उस दुष्ट आत्मा ने सातों के कपड़े फाड़कर और जो दौड़ा दौड़ा के मारा है ना उनको, नंगे होके भाग लिए वो। इतना याद रखें, दुष्टात्मा जो है किसके नाम से थरथराती है? हम आम इंसान है, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, मैं एक आम इंसान हूं, आप ही की तरह, मेरी मुझमें कोई सामर्थ्य नहीं है, हम जो यहां पर है हमारे बीच में किसी के अंदर भी वो सामर्थ्य नहीं है। जो सामर्थ्य का जो स्रोत है वो है यीशु मसीह। कौन है यीशु मसीह? जिसके नाम से दुष्टात्मा थरथराती है, जिसके नाम से दुष्टात्मा भागती है। और यहां पर यीशु मसीह आगे बोल रहे हैं, ये जो वचन जो बोल रहा है कि भी जो मेरे साथ नहीं वे मेरे क्या है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वे क्या करता है। और उन सात जो थे वो यीशु की तरफ थे या यीशु के विरोध में थे? उनको तो यीशु मसीह का पता ही नहीं था यीशु मसीह कौन है। वो तो अपने फायदे के लिए भाई, अपने पैसे को भाई, उनसे पैसे को लूटने के लिए ये भगत क्या करते हैं। उनको तो बोतल चाहिए है, मुर्गा चाहिए, उनको पैसा चाहिए है ना, लूटने के लिए रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह को कुछ नहीं चाहिए, यीशु मसीह के भक्तों को कुछ नहीं चाहिए। और यहां पर बोल रहा है कि भाई जो भाई मेरे साथ में नहीं है वो बटोरता नहीं, वो बिखेरता है। आगे देखिए 31 में क्या लिखा है,
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी।
ठीक है, यहां पर बता रखा भी ये भाई यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ये भाई लोगों का हर प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। हर प्रकार के पाप, जब हम पाप का पश्चाताप करते हैं अभी, चाहे हमने हो सकता है हमारे बीच में किसी ने भाई गाली दी हो या कुछ भी किया हो, प्रभु माफ करते हैं, प्रभु क्षमा करते हैं, प्रभु ने क्षमा कर दिया। बोल रहे हर प्रकार के पाप यीशु मसीह क्षमा कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप, किनके? जिन्होंने पाप किए और प्रभु से पश्चाताप की और उसने क्या कर दिया, उन पापों को क्षमा कर दिया। और उन पापों को क्या करना है, छोड़ना है, क्या करना है ना। अब ये नहीं है कि भाई यीशु मसीह पहले जब जानते नहीं थे गाली देते थे, अब यीशु मसीह को जान गए अभी भी गाली दे रहे हैं, और वो क्षमा कर दे मैंने गाली दे दी, फिर दोबारा ऐसा माहौल बना, फिर दोबारा क्या कर दी, गाली दे दी, प्रभु तू क्षमा कर दे। बाइबल में बोलते हैं, बाइबल में लिखा है कि हम क्या कर रहे हैं, अनुग्रह को तुच्छ जान रहे हैं, अनुग्रह को तुच्छ जान रहे हैं। प्रभु का वचन ये बोल रहा है कि भाई हम यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से पाप कर रहे हैं यीशु मसीह को जान गए, लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं भाई ऐसे पाप भाई हर प्रकार के क्षमा कर देंगे जब उनको छोड़ने का प्रयास करते हैं, छोड़ते हैं। और देखो आगे क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह,
परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी।
किसकी क्षमा नहीं की जाएगी? देखो ये जो बात हो रही है ये अविश्वासी की बात नहीं हो रही है, समझ रहे हैं। अब उनको नहीं पता कि भाई पिता परमेश्वर कौन है, उनको नहीं पता यीशु मसीह कौन है, उनको नहीं पता पवित्र आत्मा कौन है, उनको नहीं पता, ठीक है। लेकिन जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं उनको पता है पवित्र आत्मा है कौन, उनको पता है यीशु मसीह है कौन, उनको पता है कि भी पिता परमेश्वर है कौन, उनको पता ही था तमाम बातें। लेकिन जानबूझकर, इसको कहते हैं एक है भाई ईश निंदा, परमेश्वर की तिरस्कार करना, परमेश्वर की निंदा करना जानबूझकर, अनजाने में नहीं। ये जानबूझकर फरीसियों ने उन शब्दों को बोला है, क्या बोला, कि ये जो शैतान की मदद से क्या करता है दुष्ट आत्मा को निकालता, किसको बोला, ये यीशु मसीह को जानबूझ के बोला है। वो जो बोल रहे हैं उन्होंने जानबूझ के बोला, जानबूझ के पाप कर रहे हैं, और यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं कि भी जिसने जानबूझकर ईश्वर की निंदा करी, परमेश्वर की निंदा करी, परमात्मा की निंदा करी, पवित्र आत्मा की निंदा करी, उसके पाप क्षमा नहीं। जिसने जानबूझकर अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा करी, सावधान रहना अपने शब्दों में। हो सकता है ऐसी परिस्थिति आए हमारे जीवन में, हम परेशान हो, हताश हो, और उसके कारण हो सकता है शैतान हो, उसके कारण हो सकता है हमारे वही कुछ गलत निर्णय हो सकता है, ये बीमारी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम परमेश्वर पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर जान बूझ के निंदा कर रहे हैं, प्रभु को जानते हुए प्रभु हमारे जीवन में, प्रभु ने हमको अनंत जीवन के लिए चुन लिया, उसके बावजूद भी यदि हम उसकी निंदा कर रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं, उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं, कुछ इस प्रकार से यहां पे बोल रहा है कि उसके पाप क्या नहीं होंगे, क्षमा नहीं होंगे। ये अविश्वासी की बात नहीं हो रही, विश्वासी की बात हो रही है। हम प्रभु ने हमको चुन लिया, प्रभु ने हमको चुन लिया है। और सोचें पौलुस जो था, पौलुस तो मसीह लोगों को बहुत मारता था, घर में घुस के मारता था, बच्चों को मारता था, बुजुर्गों को मारता था, सबको मारता था, प्रभु यीशु मसीह की निंदा भी करता था, लेकिन प्रभु ने क्या करा उसके पापों को? आदम और हव्वा ने पाप किया, उसका परिणाम हम सब भुगत रहे हैं, उसका परिणाम उन्होंने भी भुगता, लेकिन प्रभु ने उनके पापों को भी क्षमा किया, ठीक है, उनके लिए बलि चढ़ाया वहां पर ही, खुद ही यीशु मसीह ने, प्रभु ने बलि चढ़ाकर उनके लंगोट बनाए, उनके लिए कपड़े बनाए। जब वहां पर भाई उसने अब्राहम ने पाप किया, प्रभु ने उसके पापों को क्षमा किया, है ना, जब उसने हगार के साथ उसने व्यभिचार किया, जब क्या कहते याकूब ने पाप किया, प्रभु ने उसके पापों को क्षमा किया, जब मूसा ने पाप किया, प्रभु ने मूसा के पापों को माफ किया, और जब पतरस ने पाप किया, पतरस ने यीशु का इनकार किया है, समझ रहे हैं आप, प्रभु ने उसके पापों को माफ किया, प्रभु माफ करते हैं, क्योंकि भाई, लेकिन ऐसे पाप जो प्रभु को जान गए और जानने के बाद हम पवित्र आत्मा के विरोध में बोल रहे हैं, और प्रभु का वचन ये कह रहा है कि भाई जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में अर्थात यीशु मसीह के विरोध में कहेगा, ये कब की बात हो रही है, ये उस समय में यीशु मसीह शरीर की सेवकाई में, ठीक है, यीशु मसीह वहां पर है, कहां पर, दुनिया में, शरीर भाई दुनिया में है, उस समय में हमारे पापों के लिए बलि होने वाले हैं, यीशु मसीह उस समय की बात कर रहे हैं कि भाई अभी इस समय में यदि कोई भाई मेरे विरोध में कुछ बोलेगा तो उसके पाप क्या हो जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे, मगर उसका अपराध क्षमा ना किया जाएगा जो पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, ठीक है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों क्या हैं? तीनों अलग हैं लेकिन एक हैं, क्या हैं? तीनों अलग हैं लेकिन क्या हैं? यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा है मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मुझसे ज्यादा सामर्थ्य, ओ मैं थोड़ा कम सामर्थ्य में हूं, नहीं, जितनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर की है, जितनी सामर्थ्य यीशु मसीह की है, उतनी सामर्थ्य पवित्र आत्मा की, तीनों बराबर हैं सामर्थ्य के अंदर, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा, यीशु मसीह यहां ये अंतर लेकर नहीं आ रहे, यीशु मसीह उस समय में शरीर की सेवकाई में है, यीशु मसीह उस समय में हमारे पापों के लिए बले होने के लिए जाने वाले हैं, और यीशु मसीह बोले यदि तुम मेरे बारे में बोलोगे तो वो पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन जो मेरे भाई पवित्र आत्मा के विरोध में, जो आत्मिक सेवकाई में, जो आत्मिक रूप से भाई यीशु की जो मदद कर रहा है पवित्र आत्मा, यदि कोई उसके विरोध में बोलेगा तो उसके पाप क्षमा नहीं। और आज इस समय में ये हमारे लिए भी है कि जब हम यीशु मसीह को जान गए, जब हम पिता परमेश्वर को जान गए, जब हम पवित्र आत्मा को जान गए, हमें जानबूझ के ईश्वर निंदा नहीं करनी है, इंग्लिश में एक शब्द है ब्लैस्फेमी, हमें परमेश्वर की निंदा नहीं करनी, परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं बोलना, परमेश्वर के कुछ लोग बोल, एक व्यक्ति बोलता था, यीशु मसीह को जानता था, बोलता था मैं यीशु मसीह को ना गाली देता हूं, गाली देता हूं, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ठीक नहीं है, प्रभु का वचन नहीं बोलता है, जानबूझकर उसका बिहेवियर ही कुछ ऐसा था, शायद यहां से थोड़ा अलग ही था वो, कई बार हो सकता है हम यहां से अलग ना हो, सही है, नॉर्मल है, तो परिस्थिति ऐसी आई कि हमने भाई ऐसे आया और हमारे मुंह से कुछ निकल गया, और प्रभु का वचन क्या, सावधान, आगे अगर पढ़ेंगे ना, पढ़ना उसके आगे, आगे बता रखा पेड़ और उसके फल के बारे में बता रखा है, बोलो भाई जैसा पेड़ होगा वैसी अंदर से निकलेंगे, अंदर जो भरा हुआ है वो कहां आएगा, बाहर आएगा, अंदर अच्छा भरा है तो क्या निकलेगा, अगर अंदर बुरा भरा है तो क्या निकलेगा, प्रभु बोल रहा है, आगे बोल रहे हैं कि भी अपने, अब भाई यहां पे लिखा है 37 में लिखा है कि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहरेगा, क्या करेगा, और यहां पे 36 में लिखा है मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बातों को क्या लेगा, भाई इसलिए बोलना संभल के बोलना है, प्रभु के बारे में अगर बोले तो प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु को परीक्षा, प्रभु परीक्षा के समय में प्रभु के विरोध में कुछ ना बोले, और यहां पर एक बात जो साफ निकल के आ रही है, प्रभु हमारे पापों को माफ करते हैं, वो दयालु है, वो दया से भरे परमेश्वर है, लेकिन ऐसे पाप ना करें, ऐसे पाप ना करें जो हम उसके विरोध में कुछ शब्दों को बोल रहे हैं, किसके विरोध में, परमेश्वर के विरोध में, आए कि ना उसके सम्मुख जाएं, वो बोलता है कि ना तो इस लोक में और ना परलोक में उसके पाप क्षमाऊंगे, प्रभु तो दयालु है, दया से भरा परमेश्वर है, प्रभु आपने, आप हमको हमारी कलीसिया में जो भी लोग आए उनको भ्रम से निकालें कि कि मरने के बाद आत्माएं यहां भटकती हैं, इस भ्रम से निकालें प्रभु यीशु मसीह, जो आपसे हमको दूर करते हैं, अपने पवित्र बाड़े में, पवित्र उपस्थिति में रखें, अपनी शांति दे प्रभु, और हमें ऐसा बनाए पवित्र आत्मा के द्वारा, हम आपके विरोध में कुछ भी, कोई भी ऐसी परीक्षा शैतान लेकर आता है, हम कुछ भी आपके विरोध में ना बोलें प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारे शब्दों को प्रोटेक्ट करें, हमारी फीलिंग्स अपने नियंत्रण में रखें, हमारे शब्दों को अपने नियंत्रण में रखें प्रभु, हमें ऐसा बनाए। और प्रभु ये जो संसार का जो हाकिम है थोड़े समय तक है, और इसके अंदर बहुत सारी परीक्षाएं प्रभु, क्योंकि आपने हमको चुन लिया, बहुत सारी ऐसी बातें जिसका प्रभाव हमारे जीवन में है, इस संसार की बातों का प्रभाव हमारे जीवन में है, वो राजा इसलिए हमारे पर उसका प्रभाव है, उस प्रभाव से प्रभु हमारी कलीसिया के लोगों को आप निकालें प्रभु, और अपने वचन से भर दे, कूट कूट के भर दे प्रभु, हर एक को यीशु मसीह के नाम से।